एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो बहुत भव्य है, कविताओं से भरी है, प्यार है लेकिन गहरा दुख भी है। हम बात कर रहे हैं चीनी साहित्य के एक बहुत बड़े स्तंभ चाओ शुएकिन के कालजयी उपन्यास लाल खंड का सपना।
हाँ, इसे होंगलू मेंग भी कहते हैं और पत्थर की कहानी भी। ये नाम ही अपने आप में कितने दिलचस्प हैं।
बिल्कुल, लाल खंड का सपना, पत्थर की कहानी, ऐसा लगता है जैसे कोई कोई राज खुलने वाला है।
हाँ, साधारण कहानी नहीं लगती।
और इसके लेखक चाओ शुएकिन, वो खुद भी उनका समय था 1715 से 1763 के आसपास। एक ऐसे कुलीन मांचू परिवार से थे जिन्होंने किंग राजवंश में जबरदस्त शानो शौकत देखी।
अच्छा।
और फिर सब कुछ बिखरते हुए भी देखा, एक तरह की तबाही झेली।
ओहो, तो कहते हैं कि ये अनुभव उपन्यास में झलकता है।
हाँ, बहुत गहरी छाप है, इसीलिए इसे अक्सर अर्ध आत्मकथात्मक भी कहा जाता है।
मतलब जो जिया वही कहानी बन गया, ये बात तो इसे और भी, क्या कहूँ, मार्मिक बना देती है।
बिल्कुल, और यही वजह है कि ये चीन के चार सबसे महान क्लासिकल उपन्यासों में गिना जाता है। इसकी एक खास बात ये भी है कि उस दौर में ज्यादातर ऐतिहासिक महाकाव्य लिखे जाते थे।
हाँ, राजा महाराजाओं की कहानियां।
सही, पर ये उपन्यास एक परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके अंदरूनी रिश्तों, किरदारों के मन में क्या चल रहा है, इस पर बहुत बारीकी से ध्यान देता है।
तो ये उस वक्त के हिसाब से काफी नया रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस विशाल जटिल उपन्यास के सागर में उतरे, इसकी कहानी समझें, मुख्य किरदारों के सफर को देखें और इसके जो गहरे विषय हैं, जो साहित्यिक जादू है, उसे पकड़ने की कोशिश करें।
सुनने में तो ये एक बड़ा ही रोमांचक सफर लग रहा है। तो कहाँ से शुरू करें? क्या सीधे उस अमीर परिवार से कहानी शुरू होती है?
नहीं, यही तो आप कह सकती हैं पहला मोड़ है। कहानी इंसानों की दुनिया से शुरू नहीं होती।
अच्छा, फिर कहाँ से?
स्वर्ग से। एक पत्थर की कहानी है ये, एक ऐसा पत्थर जिसे देवी नुआ ने स्वर्ग की मरम्मत करते समय, मतलब बेकार समझकर छोड़ दिया था।
एक पत्थर?
हाँ
लेकिन ये कोई कोई खास पत्थर होगा।
हाँ खास इसलिए कि इसमें संवेदना थी, चेतना थी, ये महसूस कर सकता था।
कमाल है, एक महसूस करने वाला पत्थर। तो फिर ये दुनिया में कैसे आया?
वो दुनियावी जिंदगी का अनुभव करना चाहता था। तो एक बौद्ध और एक ताओवादी भिक्षु ने उसकी ये इच्छा पूरी की और वो पत्थर जिया बाओयू नाम के लड़के के रूप में जन्मा।
जिया बाओयू, ये हमारे नायक हैं?
हाँ, और जन्म के समय उसके मुंह में एक जादुई जेड का टुकड़ा था।
अच्छा, मुंह में जेड, ये तो उसके खास होने का बड़ा पक्का संकेत है। पर आपने कहा था लाल खंड का सपना और पत्थर की कहानी, क्या पत्थर का कोई और भी राज है, कोई लाल रंग से जुड़ाव?
हाँ, एक और पौराणिक कड़ी है यहाँ। इंसान बनने से पहले स्वर्ग में इस पत्थर ने अपनी दिव्य ओस से एक जादुई पौधे को सींचा था।
एक पौधे को?
हाँ, क्रिम्सन पर्ल फ्लावर, मतलब लाल मोती फूल।
ओहो, लाल मोती फूल।
और उस फूल ने, वो एहसानमंद हुई, उसने संकल्प लिया कि जब वो इंसान के रूप में जन्म लेगी तो इस एहसान का बदला चुकाएगी।
बदला चुकाएगी कैसे?
अपने आंसुओं से।
आंसुओं का कर्ज, क्या गहरी बात है। तो क्या क्या ये पत्थर और वो फूल इंसानी दुनिया में मिलते हैं?
बिल्कुल, यही आध्यात्मिक अनुबंध, यही कर्म का बंधन उपन्यास के सबसे सबसे दर्द भरे और खूबसूरत रिश्ते की नींव बनता है। अब आते हैं जमीन पर। उपन्यास का केंद्र है राजधानी, यानी आज का बीजिंग। वहां बसा जिया परिवार का आलीशान घर।
जिया परिवार?
हाँ, और खास तौर पर उनके घर का एक हिस्सा भव्य दृश्य उद्यान, ग्रैंड व्यू गार्डन।
ग्रैंड व्यू गार्डन, ये नाम ही काफी भव्य लग रहा है, ये क्यों इतना खास था?
इसे बनवाया गया था बाओयू की बड़ी बहन युआनचुन के सम्मान में। वो सम्राट की उपपत्नी बन गई थी।
अच्छा, तो ये परिवार के रुतबे का प्रतीक था।
हाँ, उस वक्त ये उनके शिखर पे होने का निशान था। लेकिन उससे भी ज्यादा ये बाओयू और उसकी चचेरी बहनों के लिए एक एक जन्नत जैसा बन गया।
जन्नत किस मायने में?
एक ऐसी जगह जहां वो बाहरी दुनिया के आडंबरों से, भ्रष्टाचार से दूर थे। कविता, कला, हंसी मजाक, मासूमियत, उनकी अपनी एक अलग दुनिया थी उस बाग में।
एक सुरक्षित कोना। तो इस जन्नत जैसे बाग में कौन कौन थे मुख्य लोग बाऊयू के अलावा?
सबसे पहले तो जिया बाऊयू, हमारा नायक, वो पत्थर का अवतार।
हाँ, जेड वाला।
हाँ, जिंदगी से भरपूर, लेकिन उसे वो पारंपरिक रास्ते पसंद नहीं, जैसे सरकारी अफसर बनना, रुतबे के पीछे भागना, इन सबसे उसे नफरत है।
तो कैसा है वो?
बहुत संवेदनशील है, कलात्मक है, दूसरों का दर्द समझता है, और दिलचस्प बात ये कि उसे मर्दों की संगत से ज्यादा अपनी चचेरी बहनों और घर की दासियों का साथ भाता है।
हाँ, उन्हें वो ज्यादा पवित्र और समझदार मानता है।
बिल्कुल, और यही कहानी में आती है लिंदायू।
लिंदायू, क्या ये वही?
हाँ, वही क्रिम्जन पर्ल फ्लावर जिसे आंसुओं का कर्ज चुकाना था।
ओहो, तो वो फूल ही दायू के रूप में जन्मे।
हाँ, वो बाऊयू की छोटी चचेरी बहन है, माँ के गुजरने के बाद जिया खानदान में रहने आती है। बेहद जहीन कमाल की शायरा, लेकिन सेहत थोड़ी नाजुक रहती है उसकी।
और उसकी पहचान शायद उसकी भावनाओं से है।
बिल्कुल, सच्ची भावनाएं, गहरे एहसास। बाऊयू के लिए उसका प्यार बहुत गहरा है, जुनून की हद तक, लेकिन वो खुद को हमेशा, मतलब एक बाहरी, एक अनाथ जैसा महसूस करती है। शक, जलन, असुरक्षा, ये सब उसे घेरे रहते हैं।
दुख की छाया है उस पर। और तीसरी कौन थी त्रिकोण में?
वो है श्वे बाउचाई, बाऊयू की एक और खूबसूरत, समझदार चचेरी बहन, लेकिन दायू से एकदम अलग।
कैसे अलग?
बाउचाई शांत है, व्यावहारिक है, सामाजिक तौर तरीकों में माहिर, एकदम आप कह सकती हैं उस जमाने की आदर्श कन्फ्यूशियस महिला, समाज के नियमों पर खूबसूरती से चलने वाली। और उसके पास एक सोने का लॉकेट है। कहते हैं कि वो बाऊयू के जेड से मेल खाता है।
ओह, तो ये जेड और सोने का मेल, क्या ये उनकी किस्मत जोड़ने का इशारा है?
हाँ, दुनिया की नजर में, समाज की नजर में वही बाऊयू के लिए सही जीवन साथी है।
तो ये बन गया त्रिकोण, बाऊयू, उसकी रूह की साथी दायू, और समाज के लिए उपयुक्त बाउचाई। असली कश्मकश तो यहीं से शुरू होती होगी।
हाँ, यही उपन्यास का दिल है। बाऊयू का सफर है मासूमियत से मोहभंग तक का। वो दायू से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन
परिवार की इच्छाओं के आगे मजबूर हो जाता है।
मजबूर मतलब
उसे धोखे से बाऊचाई से शादी करनी पड़ती है।
ओहो, धोखा।
हाँ, और इस धोखे का नतीजा होता है दायू की मौत। बाऊयू पूरी तरह टूट जाता है, और आखिर में उसे आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और वो सब कुछ त्याग देता है।
और दायू, उसकी कहानी तो सच में आंसुओं से ही लिखी गई।
बिल्कुल, उसका वो आंसुओं का कर्ज चुकाना एक भयानक त्रासदी बन जाता है। उसकी सेहत हर भावनात्मक चोट के साथ और बिगड़ती जाती है, और जब उसे शादी के धोखे का पता चलता है
तब तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। मरने से पहले वो अपनी सारी कविताएं जला देती है।
अपनी कविताएं
जो शायद बाऊयू के लिए थी।
हाँ, और फिर वो दम तोड़ देती है। उसकी मौत जैसे ये दिखाती है कि वो समाज, वो दुनिया इतने पाक और गहरे जज्बात को संभाल ही नहीं सकी।
कितनी दुखद बात है। और बाऊचाई का क्या हुआ? उसे तो शादी मिल गई जो सब चाहते थे।
शादी तो मिली, पर वो खुशी नहीं मिली जिसकी शायद उम्मीद थी। बाऊयू का हाथ मिला, पर दिल, दिल कभी नहीं। आखिर में वो एक जवान गर्भवती विधवा रह जाती है। उसकी कहानी भी अपनी जगह एक त्रासदी है। समाज के हिसाब से परफेक्ट जिंदगी, लेकिन अंदर से एकदम खाली।
इन तीनों के अलावा भी कई मजबूत किरदार होंगे।
हाँ बिल्कुल, जैसे दादी जिया परिवार के मुखिया हैं, बाऊयू को बहुत प्यार करती हैं, और एक किरदार है वांग शीफेंग।
वांग शीफेंग, हाँ, उसे मसालेदार फीनिक्स भी कहते हैं ना। हाँ, घर की बहुत चालाक, कभी कभी क्रूर मैनेजर, परिवार के पतन में उसकी भी भूमिका है, और उसका अपना उठना गिरना भी कहानी का एक अहम हिस्सा है।
चलिए अब कहानी के उस सुनहरे दौर पर चलते हैं जब सब कुछ अच्छा था।
हाँ, शुरुआत में जिया परिवार अपने पूरे शबाब पर है, दौलत, रुतबा, सब कुछ।
और तभी लिंदायू घर में आती है।
हाँ, और बाऊयू से उसकी पहली मुलाकात, वो एक बहुत खास पल है, जैसे वो एक दूसरे को जन्मों से जानते हों, एक पल में गहरा जुड़ाव।
और फिर शुए परिवार भी आता है बाऊचाई के साथ।
सही, और फिर बनता है वो शानदार ग्रैंड व्यू गार्डन।
हाँ, वो जन्नत।
ये वो दौर है जब बाऊयू और बहनें उस बाग में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं। पानी के किनारे बैठकर शेरो शायरी हो रही है,
वाह,
केकड़े के फूलों का त्योहार मन रहा है, पतंगे उड़ रही हैं, मजाकिया नोकझोंक चल रही है, बहुत खूबसूरत मंजर है वो।
लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया हो।
हाँ, लेकिन इसी जन्नत में खतरे की आहट भी सुनाई देती है।
कैसे?
बायोयू एक सपना देखता है, बहुत अजीब सपना। वो भ्रम की भूमि की सैर करता है।
भ्रम की भूमि?
हाँ, और वहां उसे किताब दिखती है। उसमें कुछ रहस्यमयी कविताएं और तस्वीरें हैं जो उन सभी लड़कियों की दुखद किस्मत बताती हैं जिनसे वो प्यार करता है।
ओह, मतलब भविष्य का इशारा, खुशियों के बीच दुख का अंदेशा।
बिल्कुल, ये सपना जैसे एक बीज बो देता है कि ये सब जो दिख रहा है ये हमेशा नहीं रहेगा, ये अस्थाई है। हालांकि बायोयू उस वक्त इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, पर ये चेतावनी की तरह है।
तो ये सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं टिकता, दरारें पड़ने लगती हैं।
हाँ, शान और शौकत का जो पर्दा है उसके पीछे मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। परिवार के खर्चे आमदनी से ज्यादा होने लगते हैं।
पैसे की तंगी इतने अमीर परिवार में?
हाँ, और वोंग शिफेंग का जो मैनेजमेंट है उसमें भी गड़बड़ियां हैं। वो चोरी छिपे सूदखोरी का धंधा भी चलाती है जिससे हालात और बिगड़ते हैं।
ओहो, अंदरूनी समस्या है।
हाँ, घर के अंदर भी खिंचतान शुरू हो जाती है। अलग अलग शाखाओं में ताकत की लड़ाई, मालिकों और नौकरों के बीच तनाव बढ़ता है, और बाहर मतलब राजनीतिक दुनिया में भी परिवार के दुश्मन मजबूत होने लगते हैं।
माहौल बिगड़ने लगता है, और इसी माहौल में बायु और दायु का प्यार
वो और गहरा होता जाता है। उसमें बेपनाह खुशी भी है लेकिन उतना ही गहरा दर्द भी।
दर्द क्यों?
लगातार झगड़े होते हैं, जलन होती है, फिर आंसुओं के साथ सुलह होती है। उनका रिश्ता बहुत तीव्र है।
और दूसरी तरफ परिवार वाले क्या सोचते हैं, खासकर बायु की माँ?
वो खासकर बायु की माँ लेडी वांग, वो धीरे धीरे शांत और समझदार बाउचाई को बायु के लिए ज्यादा सही मानने लगती हैं। उन्हें लगता है दायु की बीमारी, उसका वो तीव्र स्वभाव, वो परिवार के लिए ठीक नहीं है।
तो वो बाउचाई जो बहू बनाना चाहती हैं।
हाँ,
और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से सब कुछ बिखर जाता है,
वो शादी वाला मोड़। हाँ, परिवार के बड़े फैसला करते हैं कि बायु की शादी बाउचाई से ही होनी चाहिए। उन्हें लगता है इससे बायु सुधर जाएगा, जिम्मेदार बनेगा और परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।
लेकिन बायु, वो तो दायु से प्यार करता है, क्या वो मान जाता है?
यहीं पर वो क्रूर धोखा होता है।
धोखा? कैसा धोखा?
बायु को बताया जाता है कि उसकी शादी उसकी कजिन लिन से हो रही है।
कजिन लिन, वो तो दायु है।
हाँ, वो यही समझता है, लेकिन ये एक चालाकी है क्योंकि बाउचाई के मायके का नाम भी लिन से जुड़ा हो सकता है। वो इस बारीक बात का फायदा उठाते हैं।
अरे,
और उसी वक्त बायु का वो जादुई जेड, वो चोरी हो जाता है।
जेड चोरी हो जाता है?
हाँ, जिससे वो बीमार पड़ जाता है, लगभग बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। उसका विरोध करने की मतलब हिम्मत ही खत्म हो जाती है।
हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी साजिश है उसके अपने ही लोग।
हाँ,
हाँ।
और फिर आता है उपन्यास का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा झकझोर देता है।
क्या होता है?
एक तरफ बायु और बाउचाई की भव्य शादी हो रही है, बाजे बज रहे हैं, जश्न मन जा है।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त दायु अपने कमरे में अकेली दम तोड़ रही होती है।
एक ही वक्त पर?
हाँ, शादी और मौत।
हाँ,
वो शादी के बाजों की आवाज सुनती है, उसे धोखे की सच्चाई का एहसास होता है, और वो अपनी वो सारी कविताएं जला देती है
ओफो।
जो उसकी और बायु की मोहब्बत की गवाह थी। वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके आखिरी शब्द बायु के लिए एक पुकार होते हैं।
ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और बायु, जब उसे पता चलता है,
जब शादी के बाद वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है और बाउचाई को देखता है, तो उस सदमे से वो जैसे होश में आता है।
और फिर?
फिर वो कभी ना खत्म होने वाले दुख में डूब जाता है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं है, ये गहरे रूहानी और सामाजिक बिखराव का प्रतीक है। उस धोखे ने जैसे सबकी आत्मा को चोट पहुंचाई।
तो क्या इसके बाद परिवार का पतन भी तेज हो जाता है?
हाँ, प्रेमियों की ये त्रासदी तो जैसे आने वाली बड़ी तबाही की शुरुआत थी। जिया परिवार के जो दुश्मन थे दरबार में,
हाँ,
वो सम्राट को यकीन दिला देते हैं कि ये परिवार भ्रष्ट है, वफादार नहीं है।
और फिर
शाही सिपाही हवेली पर छापा मारते हैं।
छापा?
हाँ, सारी जायदाद जब्त कर ली जाती है, घर के मुख्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
फर्श से फर्श पर, मतलब सब खत्म।
बिल्कुल, रुतबा गया, दौलत गई। वांग शिफेंग जो कभी इतनी ताकतवर थी,
हाँ, मसालेदार फीनिक्स,
वो बेसहारा और बेइज्जत होकर मर जाती है। दादी जिया भी दुख से चल बसती हैं, और वो खूबसूरत ग्रैंड व्यू गार्डन,
वो जन्नत,
वो अब एक खंडहर है।
इस पूरी बर्बादी के बीच बाऊयू का क्या होता है?
वो एक तरह से अपने पिता के लिए आखिरी फर्ज निभाता है, सरकारी परीक्षा पास करता है।
अच्छा,
इतनी तबाही के बाद भी?
हाँ,
लेकिन फिर उसे एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होता है।
आध्यात्मिक अनुभव?
हाँ, वही बौद्ध और ताऊवादी भिक्षु उसे फिर मिलते हैं जिन्होंने उसे दुनिया में भेजा था।
वो शुरुआत वाले भिक्षु?
हाँ, और वो उसे पूरी तरह एहसास दिलाते हैं कि ये दुनिया, ये रिश्ते, ये प्यार, ये दुख सब एक भ्रम था, एक सपना।
वो लाल खंड का सपना?
बिल्कुल, वो समझ जाता है कि उसका सारा प्यार, सारा लगाव, ये सब एक माया जाल का हिस्सा था।
तो क्या वो सब कुछ छोड़ देता है?
हाँ, वो अपनी गर्भवती पत्नी, बाऊचाय और उस बर्बाद हो चुके परिवार को पीछे छोड़ देता है और बर्फ से ढके मौसम में उन भिक्षुओं के साथ गायब हो जाता है।
गायब हो जाता है कहाँ?
वापस अपने असली अलौकिक दुनिया की ओर, जहां से वो आया था। पत्थर अपनी जगह लौट जाता है
और उपन्यास का अंत परिवार के खंडहरों को साथ होता है। ये दिखाता है कि हर शानदार दावत आखिरकार खत्म होती है। क्या कहानी!
सच में दिल पे गहरा असर करती है। चलिए अब थोड़ा इसके जो गहरे मतलब हैं, जो विषय हैं, उन पर बात करते हैं। आपने कहा था भ्रम बनाम वास्तविकता, ये एक मुख्य विषय है।
हाँ, ये तो जैसे पूरे उपन्यास में फैला हुआ है। आपने बताया था परिवारों के नाम भी, जिया मतलब झूठा, जहन मतलब सच्चा।
हाँ, और कहानी को ही एक सपना कहा गया है, पत्थर पर लिखी कहानी कहा गया है। वो ग्रैंड व्यू गार्डन भी एक अस्थाई जन्नत थी जो खत्म हो गई।
तो उपन्यास का निचोड़ ये है कि दुनिया में जो कुछ हमें इतना ठोस, इतना असली लगता है, दौलत, रुतबा, रिश्ते, प्यार, वो सब अस्थाई हैं, एक भ्रम।
हाँ, एक तरह से बौद्ध दर्शन की झलक है इसमें। असली ज्ञान या जागरण तभी है जब इंसान इस सच्चाई को समझ ले और इन चीजों से अपना मोह हटा ले। एक मशहूर लाइन भी है इसमें, कुछ इस तरह की, जब झूठ को सच मान लिया जाता है तो सच भी झूठ बन जाता है।
और जब शून्य को अस्तित्व मान लिया जाता है तो अस्तित्व भी शून्य बन जाता है।
हाँ, ये बहुत गहरी बात है। ये उपन्यास सिर्फ कहता नहीं, ये दिखाता है कि कैसे सबसे गहरे रिश्ते भी क्षणभंगुर हैं।
सही।
और दूसरा विषय था सांसारिक शानो शौकत का अस्थाई होना।
हाँ, ये तो जिया परिवार के उठने और गिरने की कहानी से साफ जाहिर है, कैसे वो शिखर पर थे और कैसे सब कुछ बिखर गया।
ये उपन्यास जैसे एक लंबा उदास गीत है, खूबसूरती, जवानी, ताकत, इन सब के ढल जाने का। सल्तनतें बदलती हैं, इंसानी किस्मतें बदलती हैं।
और वो शुरुआत के खुशनुमा सीन, गार्डन की पार्टियां, त्योहार, वो बाद में आने वाली तबाही की रोशनी में और भी दर्द भरे लगते हैं।
बिल्कुल, जैसे कहावत है, बड़ी दावत बिखरने के बाद खाली आंगन के सिवा कुछ नहीं बचता।
और किस्मत बनाम मर्जी का क्या मामला है? क्या सब कुछ पहले से तय था? दाइयों का आंसुओं का कर्ज चुकाना, बाऊयू का सपना,
ये एक उलझा हुआ सवाल है इस उपन्यास में। किस्मत का हाथ तो बहुत मजबूत लगता है। बाऊयू और दाइयू का प्यार जैसे पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है।
हाँ, दाइयू तो जैसे आंसुओं का कर्ज चुकाने ही आई थी।
और बाऊयू के सपने में लड़कियों की किस्मत एक किताब में लिखी हुई दिखती है, लेकिन फिर भी किरदार फैसले तो लेते हैं।
हाँ, जैसे परिवार का बाऊचाई को चुनना, वो एक फैसला था
कि चरित्र और उसके कर्मों पर निर्भर करता है।
ये दिलचस्प नजरिया है। और आखिरी मुख्य विषय था सामंती समाज की आलोचना।
हाँ, ये उपन्यास उस जमाने के कठोर, भ्रष्ट और पाखंडी कन्फ्यूशियस समाज पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है।
कैसे?
ये दिखाता है कि कैसे वो बड़े बड़े उसूल, वो रीति रिवाज अंदर से कितने खोखले हो सकते हैं, कैसे मर्दों की बनाई व्यवस्था के नीचे सब कुछ दबा हुआ है,
खासतौर पर औरतों की स्थिति।
बिल्कुल, उपन्यास में औरतों के लिए गहरी हमदर्दी दिखती है। उनकी अक्ल, उनका हुनर, उनके जज्बात, सब कुछ दिखाया गया है। लेकिन साथ ही ये भी दिखाया है कि कैसे एक ऐसा सिस्टम जो उन्हें सिर्फ, मतलब, जायदाद या सियासी मोहरा या बस वारिस पैदा करने का जरिया समझता है, कैसे वो उनकी जिंदगियों को कुचल देता है, बर्बाद कर देता है।
दायु और बाऊचाय दोनों की कहानियां इसका सबूत है, अलग अलग तरह से।
सही कहा। अब जरा कहानी कहने के अंदाज पर भी बात कर लेते हैं, क्या चीज इसे खास बनाती है।
आपने बताया था कि कथावाचक सब कुछ जानता है और वो सीधे पढ़ने वाले से बात भी करता है।
हाँ, वो एक सर्वज्ञ कथावाचक है, कहानी भी सुनाता है और बीच बीच में जिंदगी के फलसफे पर अपनी टिप्पणी भी देता है। और वो पत्थर और भिक्षुओं वाली कहानी, वो पूरी कहानी को एक फ्रेम में डाल देती है।
जैसे ये सब पत्थर का देखा हुआ एक सपना था जिसे अब कोई और सुना रहा है। ये कहानी में कहानी वाली बात वो भ्रम बनाम सच वाले थीम को और गहरा करती है।
बिल्कुल। और प्रतीकों का इस्तेमाल, जेड और सोने का लॉकेट तो साफ है।
हाँ, जेड मतलब बाउयू की रूहानी किस्मत और सोना मतलब दुनियावी समाज की मंजूरी, और वो ग्रैंड व्यू गार्डन वो सबसे बड़ा प्रतीक है।
सही। एक अस्थाई जन्नत, मासूमियत की दुनिया जो आखिरकार टूट जाती है जैसे परिवार बिखर जाता है। सपने भी बहुत अहम हैं।
हाँ, वो किरदारों के मन की गहराइयों और आने वाले कल की झलक दिखाते हैं।
और पूर्वाभास यानी फोरशैडोइंग, चाओ श्वेकिन इसमें माहिर थे।
हाँ, आपने बताया था कि किरदारों की किस्मत का इशारा पहले ही मिल जाता है कविताओं पहेलियों में।
हाँ, लगभग हर मुख्य किरदार की किस्मत का इशारा किसी न किसी तरह पहले ही दे दिया गया है। बाउयू के सपने में जो रहस्यमयी बातें थीं वो बाद में सच साबित होती हैं। इससे कहानी में एक अजीब सी उदासी और किस्मत के लिखे होने का एहसास बना रहता है।
और इतनी सारी पौराणिक बातें, प्रतीक, सपने, इन सब के बावजूद ये उपन्यास अपनी सच्चाई, अपने यथार्थवाद के लिए भी जाना जाता है।
हाँ, यही तो कमाल है। इसमें 18वीं सदी की रईसी जिंदगी का इतना बारीक, इतना सच्चा ब्यौरा है। घर कैसे थे, कपड़े, खाना, दवा दारू, सामाजिक रस्में, अदब कायदे, सब कुछ।
जैसे हम उस दुनिया को अपनी आंखों से देख रहे हो।
बिल्कुल। और यही यथार्थवाद किरदारों के जज्बातों को इतना असली, इतना भरोसेमंद बना देता है कि हम उनके दुख सुख को मतलब महसूस कर पाते हैं।
तो ये उपन्यास एक ही साथ भावनाओं की गहराई, जिंदगी की सच्चाई और फलसफे की ऊंचाई सब कुछ होता है। यह हमें इंसानी जज्बातों की ताकत और उनके पल भर में बदल जाने, उनके खो जाने का एक कभी न भूलने वाला एहसास देता है।
और साथ ही ये हमें दुनियावी मोह माया और रूहानी सच्चाई के बीच की उस पुरानी शाश्वत कश्मकश पर सोचने को मजबूर करता है जो शायद आज भी उतनी ही मायने रखती है।
बिल्कुल। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।